प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें। मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
जिस हाल में है गम है या है खुशी, आइए आप यीशु के पास आइए। राज क्या है मसीह, पास खुद देखिए। चोट भी गर लगे आप मुस्काइए। आप जिस हाल में है जहाँ से मिली है बुरा या कहीं, अपना जिसको कहे वो मिला ही नहीं। आप जब जब गिरे लोग तब तब हंसे, आग बढ़ के संभाले जो था ना कहीं। है मसीह यार सबका आपको चाहता, आके यीशु के सीने से जाइए। आप जिस हाल में है जो मसीह पास आया वो है खुश नसीब, अब तो उसको यहाँ कुछ नहीं चाहिए। प्यार का एक खजाना मसीह ने दिया, सारी दुनिया उसकी है खुद ही आजमाइए। राह उसकी मसीह, मंजिल उसकी मसीह, आप भी उस मसीह को अपनाइए। आप जिस हाल में है गम है या है खुशी, आइए आप यीशु के पास आइए। आप जिस हाल
इसी सुंदर संगीत के साथ ही हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम पुराने नियम से इतिहास की प्रथम पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 26 और 27वें अध्यायों का अध्ययन करेंगे। स्वाइए इससे पूर्व के हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करें, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे। हम प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार पुनः ये सुअवसर हमको दिया कि हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें और आपके विषय में उचित जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि इस वचन को समझने और ग्रहण करने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन को हमें सिखाएं और हमारे लिए वास्तविक बना दें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी संकट में है, क्लेश में है, किसी रोग से पीड़ित है या किसी घोर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उसका छुटकारा करने की कृपा करें। हमारे मध्य में उत्पन्न होने वाली समस्त बाधाओं को दूर कर दें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। इतिहास की प्रथम पुस्तक उसका 26वां अध्याय। 26वें अध्याय का मुख्य विषय है दाऊद और परमेश्वर का भवन अर्थात मंदिर। 26वें अध्याय में हम देखेंगे कि न केवल याजकों को सुव्यवस्थित किया गया वरन द्वारपालों को भी सुसंगठित किया गया। दाऊद ने उन्हें भी सुसंगठित किया। अब मंदिर की सफाई कौन करेगा तथा द्वारपाल की सेवा कौन करेगा, ये प्रश्न हमारे समक्ष हैं। तो 26वें अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। दाऊद इन समस्त कार्यों के लिए एक सुंदर योजना बनाता है। तो आइए हमारे साथ उस योजना को देखें। इतिहास की पुस्तक उसका 26वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, द्वारपालों के दल ये थे, कोराहियों में से मशेलेमया जो कोरे का पुत्र और आसाब के पुत्रों में से था, और मशेलेमया के पुत्र हुए पहला जकरिया, दूसरा यदीएल, तीसरा जबदिया, चौथा यतीएल, पांचवा एलाम, छठवां यहोहानान और सातवां एलहोएने, और उबेद एदोम के भी पुत्र हुए पहला शमाया, दूसरा जहोजाबाद, तीसरा योआहा, चौथा साकार, पांचवा नतनेल, छठवां अम्मीएल, सातवां इस्साकार और आठवां पुलतै। परमेश्वर ने उसे सचमुच आशीष दी थी और उसके पुत्र शमाया के भी पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे क्योंकि वे बलवान शूरवीर पुरुष थे। शमाया के पुत्र थे ओतनी, रपायल, ओबेद और एलजाबाद, जिनके भाई एलियू और समकया थे जो पराक्रमी पुरुष थे। ये सब ओबेद एदोम की संतानों में से थे। वे और उनके पुत्र और उनके संबंधी गण योग्य सेवा के लिए योग्य और शक्तिशाली पुरुष थे। और इस प्रकार ओबेद एदोम 62 थे और मशेलेमया के पुत्र एवं संबंधी 18 पराक्रमी पुरुष थे। फिर होसा जो मरारी के पुत्रों में से एक था उसके भी पुत्र थे। शिमरी तो पहला था, यद्यपि वह पहलौटाना था, उसके पिता ने उसे प्रधान बना दिया था। दूसरा हिल्किया, तीसरा तबलिया और जकरिया चौथा था। होसा के पुत्र और सब संबंधी 13 थे। तो इस प्रकार से हमने द्वारपालों के विषय में पढ़ा और किस प्रकार से दाऊद ने उनको सुसंगठित किया। 13वें पद से आगे हम और इनके विषय में पढ़ते हैं, ये वे समूह थे जिन्हें द्वारपाल की सेवा सौंपी गई थी और ये मंदिर के सुरक्षा गार्ड थे। आइए इनके विषय में पढ़ें। द्वारपालों के इन दलों में से मुख्य पुरुषों को उनके संबंधियों के समान ही यहोवा के भवन में सेवा करने के लिए कार्यभार सौंपा गया था। और क्या छोटे क्या बड़े, सभी ने अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। और पूर्व की ओर की चिट्ठी शलेमया के नाम निकली। तब उन्होंने उसके पुत्र जकरिया के लिए भी, जो बुद्धिमान सलाहकार था, चिट्ठी डाली और उसकी चिट्ठी उत्तर की ओर के लिए निकली। ओबेद एदोमी के नाम पर चिट्ठी दक्षिण की ओर से निकली और उसके पुत्रों के लिए भंडार गृह की। फिर सुप्पीम और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली अर्थात शल्यकेत के फाटक के पास की ऊंची सड़क की चढ़ाई के लिए कि वे आमने सामने होकर पहरा दे सकें। पूर्व की ओर 6 लेवीय थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4 और भंडार गृह के पास 2 थे। पश्चिम की ओर परवार नामक स्थान में राजमार्ग पर 4 और परवार के पास 2 थे। कोरह के वंशजों में से और मरारी के वंशजों में से द्वारपालों के दल यही थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दाऊद ने एक अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से द्वारपालों को नियुक्त किया ताकि वे चारों दिशा से भवन की देखभाल कर सकें, उसकी चौकसी रख सकें। उसके पश्चात दाऊद ने मंदिर के कोषपाल नियुक्त किए, ये भी आवश्यक कार्य था। धन संबंधी बातों को ठीक से रखना बहुत आवश्यक है। इनका कार्य था कि वे मंदिर के धन संबंधी कार्यों को देखें। 20 से 28 पदों में हम इनके विषय में पढ़ते हैं। और लेवियों में से अहिया और संबंधियों पर परमेश्वर के भवन के कोषागार और अर्पण की हुई वस्तुओं के कोषागार का उत्तरदायित्व था। लादान के पुत्र और गर्शोनियों के पुत्र जो लादान के घराने के थे, अर्थात एहोएली पूर्वजों के घराने के प्रधान थे, जो गर्शोनी लादान के घराने से संबंधित थे, और यहोएली के पुत्र जेताम और उसका भाई योएल थे, वे यहोवा के भवन के कोषागार के उत्तरदायी थे। और जहां तक अमरामियों, यिसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जियेलियों का प्रश्न था, उनमें से मूसा के पुत्र गर्शोम का पुत्र शबूएल कोषागारों का अधिकारी था। और एलेजर की ओर से उसके संबंधी ये थे, उसका पुत्र रब्या, रब्या का पुत्र यशाया, यशाया का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शलमोत था। यही शलमोत और उसके संबंधी अर्पण किए हुए दानों के सब कोषागारों के उत्तरदायी थे, जिन्हें राजा दाऊद और पूर्वजों के घरानों के प्रधानों, सेना के सहस्रपतियों, शतपतियों और सेनापतियों ने अर्पित किया था। युद्ध में प्राप्त लूट का कुछ भाग उन्होंने यहोवा के भवन की मरम्मत के लिए अर्पित किया था। और शमूएल नबी, कीश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अबनेर और सरूया के पुत्र योआब के समस्त दान, अर्थात जो कुछ जिस किसी ने अर्पण किया था, वह सब शलोमोत और उसके संबंधियों की सुरक्षा में था। यहां पर हमने 24वें पद में मूसा से संबंधित कुछ बातों को पढ़ा। मूसा के पुत्र गेरशोम का पुत्र शबूएल कोषागारों का अधिकारी था। मित्रवर, प्रभु के सेवक मूसा के पुत्र गेरशोम के पुत्र शबूएल को कोषागारों तथा अर्थात खजानों का अधिकारी नियुक्त किया गया था। और इस प्रकार दाऊद ने समस्त लेवीय गोत्र के लोगों को मंदिर की महत्वपूर्ण सेवाओं पर नियुक्त किया। कोष के अतिरिक्त लेवियों को न्याय संबंधी उत्तरदायित्व को भी पूर्ण करना था। ये भी लेवियों का कार्य था कि वो न्याय करें, लोगों को शिक्षा दें। इस प्रकार से दाऊद ने सबके कार्य को अलग अलग उनको सौंपा। अग्रिम पदों में हम देखेंगे कि राजा दाऊद ने अधिकारियों तथा न्यायियों की भी नियुक्ति की। आइए देखें, जहां तक यिसहारियों में से कनानिया और उसके पुत्रों का संबंध था, इसराइलियों के बाहर के काम के लिए अधिकारी एवं न्यायी निर्धारित किए गए। इसी प्रकार हेब्रोनियों में से यशबहा और उसके संबंधी 1700 योग्य पुरुष यर्दन के पार पश्चिम की ओर रहने वाले इसराइलियों के सब कार्यों की देखभाल करने और यहोवा के सब कार्य और राजा की सेवा के लिए नियुक्त किए गए थे। इसी प्रकार हेब्रोनियों में से यरिया प्रधान था, और इन हेब्रोनियों को उनकी वंशावलियों और पूर्वजों के अनुसार दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में ढूंढ निकाला था। और गिलियाद के याजेर में विशिष्ट योग्यता के लोग उनके मध्य पाए गए, और उसके संबंधी योग्य पुरुषों की संख्या 2700 थी, और पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, जिन्हें राजा दाऊद ने रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र पर परमेश्वर और राजा के प्रत्येक कार्य पर अधिकारी ठहराया। तो हम देखते हैं कि मूल रूप से परमेश्वर ने इसराइल जाति को धर्म तंत्र दिया, उन्हें मिलाप वाला तंबू दिया और याजक दिए जो परमेश्वर से निर्णय प्राप्त करते थे और प्रजा का न्याय करते थे। किंतु लेवियों की असफलता के फलस्वरूप परमेश्वर ने यह परिवर्तन किया, परमेश्वर ने न्यायी नियुक्त किए। तब हमने देखा कि न्यायी भी असफल हो गए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने एक ढंग से परमेश्वर ने एक उनको धर्म तंत्र दिया, मिलाप वाला तंबू दिया, याजक दिए जो परमेश्वर की ओर से निर्णय लिया करते थे और प्रजा का न्याय भी करते थे। किंतु आगे चलकर हमने देखा कि परमेश्वर को कुछ परिवर्तन लाना पड़ा, क्योंकि लेवीय अपनी इस सेवा में असफल हो गए। तब परमेश्वर ने उनके लिए न्यायी नियुक्त किए जो उनकी देखभाल करते थे, उनका न्याय भी करते थे, उनकी ओर से युद्ध भी लड़ते थे। किंतु हमने देखा न्यायियों की पुस्तक में कि वो भी न्याय करने में वो न्याय भी असफल हो गए। और तब लोगों ने राजा की मांग की, परमेश्वर से एक राजा मांगा कि जैसे अन्य जातियों के पास राजा है, हमारा भी राजा हो। और इस कारण से दाऊद अब इसराइल के सिंहासन पर विराजमान है। राजा इसराइल प्रजा की मांग थी, परमेश्वर ने उन्हें शाऊल दिया और शाऊल के पश्चात उन्होंने उनको दाऊद दिया, और अब दाऊद इसराइल के सिंहासन पर है। यद्यपि इसराइल अब राजा के अधीन है, फिर भी दाऊद ये भरसक प्रयास कर रहा है कि इसराइल प्रजा परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करे, वह यहोवा परमेश्वर के अधीन रहे, अर्थात परमेश्वर ही इसराइल पर राज्य करे और प्रजा को इस बात का आभास रहे। और इसलिए दाऊद निरंतर प्रजा को परमेश्वर के समीप उसकी अधीनता में लाने का प्रयास कर रहा है, और परमेश्वर की पवित्रता, उसकी सामर्थ और उसके महत्व को उनके समक्ष प्रकट कर रहा है। तब 27वें अध्याय में हमारा विषय होगा सेनापतियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति। 1 से 15 पदों में हम इस विषय में पढ़ते हैं। और इसराइलियों की गिनती ये है, अर्थात पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष और सहस्त्रपति और शतपति एवं उनके अधिकारी गण जो वर्ष भर प्रति माह आया जाया करते थे और जो दलों के सब कार्यों में राजा की सेवा टहल करते थे, प्रत्येक दल में 24,000 पुरुष थे। पहले महीने के पहले दल का अधिकारी जब्दियल का पुत्र याशोबाम था और उसके दल में 24,000 थे। वह पेरेस वंश का था और पहले महीने के लिए सब सेनापतियों पर अधिकारी था, और दूसरे महीने के लिए दल का अधिकारी अहोही दो दे था, और उसके दल का प्रधान मिकलोत था और उसके दल में 24,000 थे। तीसरे महीने के लिए यहोयादा याजक का पुत्र बनाया तीसरा सेनापति था और उसके दल में 24,000 थे। ये वही बनाया है जो तीसों में सबसे वीर और तीसों पर अधिकारी था, और उसके दल पर उसका पुत्र अम्मीजाबाद था। चौथे महीने के लिए सेनापति योआब का भाई असाहेल था और उसके बाद उसका पुत्र जबद्या था और उसके दल में 24,000 थे। पांचवें महीने के लिए पांचवा सेनापति यिज्राही शमहू था और उसके दल में 24,000 थे। छठवें महीने के लिए छठवा सेनापति तकोई इक्केश का पुत्र ईरा था और उसके दल में 24,000 थे। सातवें महीने के लिए सातवा सेनापति एप्रेम के वंश का हेलेस पलोनी था और उसके दल में 24,000 थे। आठवें महीने के लिए आठवां सेनापति जेरहा वंशीय हुशाई सिबक के था और उसके दल में 24,000 थे। नौवें महीने के लिए नौवां सेनापति बिन्यामीन एबियजेर अनातोती था और उसके दल में 24,000 थे। दसवें महीने के लिए दसवां सेनापति जेरही महरे नतोपी था और उसके दल में 24,000 थे। ग्यारहवें महीने के लिए ग्यारहवां सेनापति एप्रेम वंशीय बनाया पिरातोनी था और उसके दल में 24,000 थे। बारहवें महीने के लिए बारहवां सेनापति ओतनीएल वंशीय हेल्दे नतोपी था और उसके दल में 24,000 थे। इस प्रकार सेनापति नियुक्त किए गए। प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में एक माह सेवा करता था। उसके साथ 24,000 पुरुषों का दल सेवा किया करता था। एक माह पश्चात दूसरा सेनापति अपने दल के साथ आता और सेवा संपन्न करके अपने स्थान वापस लौट जाता। और इस प्रकार वर्ष भर इसी क्रम में सेनापति आते और सेवा करते थे। इस प्रकार वे अपने परिवारों और नगरों के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करते थे और वे अपनी सेवा से ऊबते नहीं थे। उनमें सेवा के प्रति उदासीनता भी नहीं पनपती थी। साथ ही उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती जाती थी। दाऊद वास्तव में एक बुद्धिमान राजा था और जिस प्रकार वह परमेश्वर के भवन के निर्माण की तैयारी कर रहा है उसे देखकर हम इसे सुलेमान का मंदिर न कहकर दाऊद का मंदिर कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। तब अग्रिम पदों में इसराइल के अधिकारियों के विषय में हमको बताया गया है। सो आइए देखें 16वें पद से आगे देखिए। और इसराइली गोत्रों के अधिकारी ये थे, ये गोत्रों के अधिकारी हैं, अर्थात रूबेनियों का प्रधान जिक्री का पुत्र एलियाजर, शिमोनियों का माका का पुत्र शपत्या, लेवियों का कमुएल का हशब्या, हारूनियों का सादोक, यहूदा का एलिहू नामक दाऊद का एक भाई, इसहकारियों का मिकाएल का पुत्र ओमरी, जबुलून का उबद्या का पुत्र यिश्माया, नप्ताली का एज्रियल का पुत्र शरीमोन, एप्रेम का अज्जाया का पुत्र होशे, मनुष्य के आधे गोत्र का फदाया का पुत्र योएल, गिलियाद में मनुष्य के आधे गोत्र का जकरिया का पुत्र इद्दो, बिन्यामीन का अबनेर का पुत्र यासीएल, दानियों का यारोहाम का पुत्र अज्रेल, यही इसराइल के गोत्रों के प्रधान थे। परंतु दाऊद ने 20 वर्ष या उससे कम आयु के लोगों की गणना नहीं की थी, क्योंकि यहोवा ने कहा था कि मैं इसराइल को आकाश के तारागणों के बराबर बढ़ाऊंगा। सरूया के पुत्र योआब ने उनकी गणना आरंभ तो की थी पर समाप्त ना कर सका, क्योंकि इसके कारण इसराइल पर प्रकोप भड़का और इस कारण इस गणना को दाऊद राजा के इतिहास के हिसाब में सम्मिलित नहीं किया गया। हमने देखा है कि दाऊद ने अपने अविश्वास के परिणाम स्वरूप जनगणना करवाई, किंतु अब यहां वह परमेश्वर पर विश्वास व्यक्त करता है, उसने जनगणना नहीं की, जैसा कि हमने अभी 23वें पद में पढ़ा। उसने जनगणना क्यों नहीं की? क्योंकि उसने परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास किया कि मैं इसराइल को आकाश के तारागणों के बराबर बढ़ाऊंगा, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। परंतु दाऊद ने 20 वर्ष या उससे कम आयु के लोगों की जनगणना नहीं की, क्योंकि यहोवा ने कहा था कि मैं इसराइल को आकाश के तारागणों के बराबर बढ़ाऊंगा। यहां पर हम दाऊद के विश्वास का एक अच्छा उदाहरण देखते हैं। तब आगे 25वें पद से देखें, यहां लिखा है, फिर अदील का पुत्र अजमावेत राजा के भंडारों पर अधिकारी नियुक्त था और देहाती क्षेत्रों और नगरों और गांव और गढ़ों के भंडारों का अधिकारी उज्जिया का पुत्र यहोनातान था, और जो खेती और मजदूर भूमि जोतते थे उनका अधिकारी कलूप का पुत्र इज्री था, और रामाई शिमी दाख की बारियों का अधिकारी था, और दाख की बारियों की उपज जो दाख मधु के भंडारों में रखने के लिए थी उसका अधिकारी शापामी जबदी था, और निचले प्रदेशों के जैतून और गुलरों के वृक्षों का अधिकारी गदेरी बालहानान था, और तेल के भंडारों का अधिकारी युआश था, और शारोन में चरने वाले गाय बैलों का अधिकारी शारोनी शित्रे था, और तराइयों में चरने वाले गाय बैलों का अधिकारी अदले का पुत्र शापात था, और इश्माइली ओबील ऊंटों का अधिकारी और मेरोनोती यह दया गधों का अधिकारी था, और हग्री याजीज भेड़ बकरियों का अधिकारी था। ये सब दाऊद राजा के धन संपत्ति के ऊपर अधिकारी नियुक्त किए गए थे। सो मेरे मित्र, इस प्रकार राजा ने अपनी धन संपत्ति पर भी अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए। सो ऐसी व्यवस्था थी राजा दाऊद की। क्या एक चरवाहा ये सब कुछ कर सकता है? जी हाँ मित्र, यदि वह परमेश्वर के साथ हो और परमेश्वर उसके साथ हो। मेरे मित्र, यह मेरे और आपके लिए एक महान संदेश है। आप चाहे कितने भी छोटे व्यक्ति हैं, कितने भी साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर आपके साथ है, तो आप ऐसे महान कार्यों को कर सकते हैं, क्योंकि समझ और बुद्धि तो परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती है। बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर के साथ हैं, तो परमेश्वर आपको निश्चित रूप से बुद्धि प्रदान करेगा। 32 से 34 पदों में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के नाम उल्लेखित हैं। हम इन्हें विशिष्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी सेवाएं विशिष्ट थीं। और दाऊद का चाचा योनातान एक सलाहकार, समझदार व्यक्ति और शास्त्री था, और हकमोनी का पुत्र एहियल राजपुत्रों के साथ रहा करता था, और अहितोपेल राजा का सलाहकार था, और एरेकी हुशे राजा का मित्र था, और बनाया का पुत्र यहोयादा और अब्यातार ने अहितोपेल का स्थान लिया, और योआब राजा की सेना का प्रधान सेनापति था। मेरे मित्र, इस प्रकार से 27वां अध्याय राजा दाऊद के उन अधिकारियों की सूची के साथ समाप्त होता है जो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए थे। सो मेरे मित्र, हमने इस अध्ययन में देखा कि परमेश्वर पिता की दृष्टि में ये समस्त बातें महत्वपूर्ण थीं, और इसलिए उन्होंने इन बातों का अभिलेखा यहाँ पर रखा है। इन समस्त बातों के द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर से कैसा प्रेम करना चाहिए, हमारे मन में उसका कैसा धन्यवाद होना चाहिए, हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति कैसे करनी चाहिए। मेरे मित्र, हमें परमेश्वर की सेवा कैसे सुव्यवस्थित ढंग से करनी चाहिए। इस अध्याय में हमने इन्हीं बातों को सीखा है, साथ ही अपनी और अपने घर की व्यवस्था हमको कैसी रखनी चाहिए। प्रभु आपकी सहायता करे, आपको समझ और बुद्धि दे। अब इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
प्रिय श्रोताओ, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और यदि आज के अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, हम आपकी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। श्रोताओ, हम आपको बता दें कि आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारी ईमेल आईडी है hindittb@radiovv.org, hindittb@radiovv.org। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।